आयु होटल के एक कमरे में लगभग 4 साल की बच्ची के साथ आराम से सोई हुई थी। उसने उसे कसकर हग कर रखा था। वो कोई और नहीं, उसकी बेटी आरिशा थी। आयु सुकून से सो रही थी, तभी अचानक बाहर धमाकों की आवाज़ सुनाई देने लगी। धमाके की आवाज़ से आयु की आँख खुल गई थी। उसे सुनकर आयु बुरी तरह घबरा गई और उसने आरिशा को कसकर अपने सीने से लगा लिया। बाहर की आवाज़ से आरिशा की नींद भी खुल चुकी थी। उसने मासूमियत से पूछा, मॉम बाहर क्या हो रहा है, डैड कहाँ है? कुछ नहीं हो रहा आरू, सब कुछ ठीक है, हम बाहर चलते हैं, तुम्हारे डैड भी बाहर ही होंगे, आयु ने नम आंखों से कहा। उसने आरिशा को अपनी गोद में उठाया। वो आरिशा को लेकर बाहर आ रही थी, तभी एक बड़ा सा पिलर उनके ऊपर आकर गिर पड़ा। आयु वहां जमीन पर गिर गई थी और उसकी गोद में आरिशा थी, जो खून से लथपथ थी। वो पिलर काफी बड़ा था, जो धमाके की वजह से टूट गया था। वो आयु से ज्यादा आरिशा के ऊपर गिरा था। आरिशा की एक हल्की सी चीख निकली और फिर उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसे इस हालत में देखकर आयु का सिर चकराने लगा। वो जोर जोर से रोने लगी। आयु ने इस हालत में भी आरिशा की नब्ज चेक की तो वो थम चुकी थी। उसे अपनी आंखों के सामने मरता देखकर आयु पूरी तरह टूट गई थी। वो सुबकते हुए बोली, आरव आरव, हमारी आरू को क्या हो गया, प्लीज जल्दी आओ। आयु की आंखें ठीक से खुल नहीं पा रही थीं, फिर भी उसने आरव को अपनी तरफ आते देखा। आयु ने उसे वहां आता देखकर ना में सिर हिला दिया। आयु मन ही मन बड़बड़ाकर बोली, प्लीज मत आओ, मेरे बेटे के लिए यहां मत आओ, हम दोनों ही नहीं रहे तो उसका क्या होगा, मेरा आर्य। सोचते हुए आयु की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। आरव दौड़कर आयु के पास जाने लगा, तभी एक पिलर उसके ऊपर आकर गिरा और वो भी वहीं पर गिर पड़ा। बिल्डिंग ढहने लगी थी। आरव अपना हाथ आयु की तरफ बढ़ा रहा था। उसने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, या तो तुम मेरी लाइफ में रहो या मुझे ये जिंदगी ही मंजूर नहीं, मिसेस खुराना। आरव धीरे धीरे आयु की तरफ बढ़ रहा था, तभी बिल्डिंग धंसकर नीचे चली गई थी और अगले ही पल आरव और आयु की सांसें थम चुकी थीं। उन दोनों के हाथ पास में तो थे, लेकिन एक दूसरे से दूर थे। यही कुछ चीज़ें थीं जो आयु को याद आई थीं और वो वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। ये कुछ आखिरी लम्हे थे जो आयु के पिछले जन्म से जुड़े हुए थे। भले उसे सब कुछ याद ना आया हो, लेकिन अपनी मौत के आखिरी लम्हे आयु को अच्छी तरह दिख रहे थे। कैसे आरिशा ने उसकी गोद में दम तोड़ा और फिर उसे बचाने के लिए आए आरव ने खुद की भी परवाह नहीं की। आयु इस वक्त बेहोश होकर पार्क में पड़ी थी और वहां बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ कबीर और आरव अयान के घर पर पहुंच चुके थे। बारिश होने की वजह से उन दोनों ने अम्ब्रेला ले रखा था और वो जल्दी से अंदर पहुंचे। घर में घुसते ही आरव ने आर्य से सीधे आयु के बारे में पूछा, आयु कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही, मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही है वो पूरे दिन से, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? मेरी भी कब से उनसे बात नहीं हुई, एक दो बार बुलाने के लिए गया था लेकिन उन्होंने आराम करने का बोला और बाहर नहीं आई, आर्य ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर आरव को गुस्सा आने लगा, फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करके चिढ़कर कहा, क्या मतलब पूरे दिन से बाहर नहीं आई, और तुम जाने ही वाले थे, मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर छोड़ी थी, वो बहुत केयरलेस है, तुम ठीक से उसे जानते नहीं हो, एक बार उसे जो करना होता है वो उल्टे सीधे तरीके से करके ही रहती है, मुझे ना उसे तुम्हारे भरोसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। आयु से पूरे दिन दूर होने की पूरी फ्रस्ट्रेशन आरव आर्य पर निकाल रहा था। वो दौड़कर ऊपर कमरे में गया। आरव ने दरवाजा खटखटाकर कहा, तुम डोर क्यों नहीं ओपन कर रही हो मिसेस खुराना, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, या अब तक मुझसे नाराज हो? अच्छा, आई प्रॉमिस अगली बार तुम्हें पक्का अपने साथ लेकर जाऊंगा, अब तो दरवाजा खोल दो, उसकी आवाज भारी होने लगी थी। आयु से दूर होने का ख्याल भी आरव के सांसें भारी कर रहा था। आयु के दरवाजा अभी भी ना खुलने पर आरव को टेंशन होने लगी। आर्य और कबीर भी उसके साथ वहां पर आ गए थे। आर्य को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आरव सच कह रहा था, वो अपने काम में बिजी होने की वजह से आयु के पास नहीं आ पाया। उसने आरव से कहा, डैड आई एम रियली सॉरी, हॉस्पिटल से कॉल आ गया था तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सर्जरी हैंडल करने लगा, आई स्वेयर मैं मॉम के पास गया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेनी है और साथ में वो काफ़ी थक गई हैं, तो बाद में कुछ देर के लिए सोएगी। उसने महसूस किया आरव की आंखें नम थीं, उसकी आंखों में डर था, एक बार फिर से आयु से अलग होने का डर। आरव ने घबराई आवाज में कहा, दरवाजा नहीं खोल रही है वो। कबीर ने आरव को साइड किया, फिर उसने और आर्य ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। बेड पर आयु का लैपटॉप और मोबाइल पड़ा हुआ था, पर वो वहां पर नहीं थी। कहाँ चली गई हो तुम, आरव के मुंह से निकला। वो दौड़कर खिड़की की तरफ गया तो वो खुली थी। आरव बोला, मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो कहाँ जा सकती है, मैं उसे ठीक से नहीं जानता, वो इस लाइफ में कैसी है या उसे क्या पसंद है, मुझे डर लग रहा है। कबीर महसूस कर पा रहा था कि पिछले जन्म में जहां आरव इतना स्ट्रांग था और उसे किसी का डर नहीं था, वहीं आयु को खोने के बाद अब उसे वही डर सता रहा था कि अगर आयु को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। कबीर ने आरफ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, हम उन्हें ढूंढने चलते हैं, वो यहीं आसपास कहीं घूमने गई होगी। आरफ ने उसकी बात पर हामी भरी। आर्य, कबीर और आरफ तीनों अलग अलग जगह पर आयु को ढूंढने के लिए जा रहे थे। वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने आयान और साक्षी को सारी बात बताई, वो भी उनके साथ आयु को ढूंढने के लिए निकल रहे थे। वो सभी आयु के लिए बहुत परेशान थे, एक तो इतनी तेज बारिश, ऊपर से उन्हें ये भी नहीं पता था कि आयु कब से गायब थी। वो सभी घर से बाहर गाड़ी की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उन्हें आयु दिखाई दी, जो बारिश में भीगी हुई थी। आयु की आंखों में आंसू थे और वो दौड़कर आरफ के जाकर गले लग गई। आरफ ने आयु को सहलाते हुए पूछा, कहाँ चली गई थी तुम, और तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था, तुम ठीक नहीं लग रही हो। आयु के गले लगते ही आरफ ने महसूस किया कि उसे तेज बुखार था और वो फिर से आरफ की ही बाहों में बेहोश हो चुकी थी। बेहोशी में भी आयु ने आरफ को इतना कस के पकड़ रखा था जैसे एक बार फिर से वो उसे खो ना दे। आज का चैप्टर थोड़ा छोटा लिखा है, पाठ पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ पर।